नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में जारी भूमि सर्वे के तहत पुश्तैनी जमीन के लिए वंशावली पर पंचायत प्रतिनिधियों से हस्ताक्षर कराना जरूरी नहीं। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, दरभंगा में पश्चिमी कोसी तटबंध टूटने की तकनीकी जांच कराई जाएगी। राज्य में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत अब तक 2,80,00,000 पौधे लगाए गए। और डाक सेवा के तहत पार्सल और चिट्ठियां पहुंचाने में बिहार देशभर में शीर्ष स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने जमीन सर्वे को लेकर रैयतों को हो रही परेशानियों के मद्देनजर नियम में एक बार फिर बदलाव किया है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट किया है कि पुश्तैनी जमीन का अलग अलग नाम से सर्वे कराने के लिए वंशावली पर पंचायत प्रतिनिधियों से हस्ताक्षर कराना जरूरी नहीं है। विभाग के अनुसार खतियानी रैयत के वंशज स्वयं वंशावली तैयार कर अंचल के शिविर में जमा कर सकते हैं। आपत्ति आने की स्थिति में सर्वे कर्मियों की ओर से जांच कर इसे प्रमाणित किया जाएगा। विभाग ने यह भी कहा है कि नापी के दौरान रैयत की जमीन पर सशरीर उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। राज्य सरकार ने बीपीएससी से चयनित और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति जारी कर दी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पटना में कहा कि स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों को नई नीति से बाहर रखा गया है। श्री कुमार ने बताया कि असाध्य और गंभीर रोग, शारीरिक दिव्यांगता तथा मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित शिक्षक तथा विधवा और परित्यक्त शिक्षिकाओं को उनके विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल या जिले में प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरित किया जाएगा।
अगर किसी को असाध्य रोग हो या गंभीर बीमारी हो या फिर दिव्यांगता के कारण या फिर मानसिक कोई समस्या हो तो इन सबों को हम लोग काफी उच्च प्राथमिकता देंगे। उन लोग पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे, उनके बीमारी इत्यादि के कारण उनके इलाज में दिक्कत ना हो और उनको सुविधा हो। और उसके अलावे जो वैसी महिलाएं हैं जो विडोज हैं या किसी कारणवश सिंगल हैं, तो उन लोगों के बारे में भी हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा है।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि नई नीति के अनुसार शिक्षक दंपत्ति को एक ही स्कूल में नियुक्ति मिलेगी। वहीं पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण गृह अनुमंडल में नहीं होगा। शिक्षकों को उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरित किया जाएगा। इधर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने कहा कि स्थानांतरण में शिक्षकों को 10 प्रकार के विकल्प दिए गए हैं।
स्थानांतरण नीति में हम लोगों ने सभी प्रकार, जितने भी शिक्षकों के आवेदन थे, जितने भी शिक्षकों के सुझाव थे और जितने भी शिक्षकों के अनुरोध है, हमने सभी मान लिए हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी शिक्षक हैं वो तनाव से मुक्त शिक्षा में ज्यादा ध्यान दें, और इसीलिए यह नीति उसी अनुरूप बनाई गई। सभी प्रकार के ट्रांसफर हम लोगों ने 10 ऑप्शंस दिए हैं। 10 ऑप्शन में उनको दिए जाना है और सभी को अपनी जो भी इच्छा होगी 10 के अनुसार हम लोग पोस्टिंग कर देंगे। अगर वैकेंसी होगी, अगर नहीं वैकेंसी होगी तो उसी के निकट हम लोग जहां वैकेंसी आएगी वहां हम लोग पोस्टिंग करेंगे।
डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि स्थानांतरण के लिए इसी महीने से आवेदन लिए जाएंगे और दिसंबर महीने तक पद स्थापना कर दी जाएगी। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि पश्चिमी कोसी तटबंध टूटने की तकनीकी जांच कराई जाएगी। श्री चौधरी ने दरभंगा के गौड़ाबड़ाम प्रखंड के भूवौल के पास क्षतिग्रस्त तटबंध स्थल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ खत्म होने के बाद तटबंध की शीघ्र मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। श्री चौधरी ने लहरिया सराय में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रदेश में बाढ़ के दीर्घकालिक समाधान के लिए ढेंग, तैयबपुर, अरेराज और डगमारा में बराज निर्माण की योजना बनाई जा रही है। इससे बाढ़ का प्रभाव काफी कम हो जाएगा। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम आज गया में भारत लैब की तर्ज पर विकसित बिहार जेन नेक्स्ट लैब का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार जेन नेक्स्ट पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से किए गए कार्यों और इससे संबंधित आंकड़े उपलब्ध होंगे। इसके माध्यम से किसी भी विभाग से संबंधित जानकारी एक क्लिक के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। श्री सुब्रमण्यम आज ही गया में डाटा ड्रिवन गवर्नेंस पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस सम्मेलन में 19 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत अब तक 2,80,00,000 पौधे लगाए गए हैं। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह अभियान शुरू किया था और बिहार ने तय समय सीमा 30 सितंबर से पहले ही पौधारोपण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। श्री कुमार ने बताया कि राज्य के बाढ़ग्रस्त 18 जिलों में पौधों और नर्सरियों की क्षति के लिए मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय वन पदाधिकारियों को एक सप्ताह में नुकसान की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने इस वर्ष फरवरी में बिहार विधानसभा में विश्वास मत के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि जांच में एजेंसी को कई राज्यों से वित्तीय लेनदेन के साक्ष्य मिले हैं। ईओयू ने साक्ष्य मिलने के बाद इस मामले की जांच की रिपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दी है। डाक सेवा के तहत पार्सल और चिट्ठियां पहुंचाने में बिहार देश भर में शीर्ष स्थान पर है। बिहार सर्किल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि हर महीने 80,00,000 से अधिक पत्र और पार्सल की डिलीवरी की जाती है। पटना जीपीओ में राष्ट्रीय डाक सप्ताह का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर महीने 94% से अधिक डिलीवरी की जाती है। श्री कुमार ने बताया कि प्रदेश के 3 जिलों में नए पासपोर्ट केंद्र खोले जाएंगे। ये केंद्र वैशाली, मधुबनी के झंझारपुर और पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में स्थापित होंगे। वर्तमान में राज्य में 35 पासपोर्ट केंद्र हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय आने वाले दिनों में 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री पासवान ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के दौरान मूल्यवर्धन सुनिश्चित करते हुए अपशिष्ट को कम करने के लिए 25 विकिरण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। शारदीय नवरात्र के छठे दिन आज वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देवी दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है।
जय कात्यायनी माता, जय कात्यायनी माता। सुख सृष्टि
मान्यता है कि माता के कात्यायनी स्वरूप की आराधना से रोग, शोक और संताप का हरण होता है। बांग्ला पद्धति के अनुसार पूजा वाले स्थानों पर माँ भगवती का पट आज खुल जाएगा। पटना के प्रसिद्ध शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी, कैमूर के मुंडेश्वरी मंदिर, गोपालगंज के थावे मंदिर, दरभंगा के माँ श्यामा काली मंदिर, खगड़िया के कात्यायनी शक्तिपीठ, सहरसा के महिषी स्थित उग्र तारा मंदिर और मुंगेर के माँ चंडिका शक्तिपीठ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में माहौल भक्तिमय हो गया है। प्रतिमाओं और पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
अटल अनंत अगोचर अघ आनंद राशि।
दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी पटना में यातायात को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। कई सड़कों पर कल से यातायात मार्ग में परिवर्तन किया गया है। विशेष व्यवस्था के अनुसार अगले 4 दिनों तक राजधानी की मुख्य सड़कों पर बड़े मालवाहक वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। अशोक राजपथ, भट्टाचार्य रोड से डाकबंगला चौराहा, बारीपथ समेत कई मार्गों पर आम वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। साथ ही कई मार्गों पर वन वे व्यवस्था भी लागू रहेगी। त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 83 जोड़ी ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि ये रेलगाड़ियां 31 दिसंबर तक कुल 8,500 फेरे लगाएंगी। रेलवे ने पाटलिपुत्र और छपरा के बीच कल से 31 दिसंबर तक एक जोड़ी विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन पाटलिपुत्र से सुबह 8:15 पर रवाना होगी। इधर रेलवे भर्ती बोर्ड ने कई परीक्षाओं को लेकर अधिसूचना जारी की है। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नवंबर के अंतिम सप्ताह से दिसंबर तक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। आरआरबी सहायक लोको भर्ती परीक्षा 25 से 29 नवंबर के बीच होगी। वहीं आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा 2 से 5 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। रेलवे के अनुसार तकनीशियन भर्ती परीक्षा 16 से 26 दिसंबर के बीच आयोजित होगी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 70वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। यह परीक्षा अब 13 और 14 दिसंबर को आयोजित होगी। पहले यह परीक्षा 14 नवंबर को निर्धारित थी। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और संपूर्ण क्रांति के नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर पटना में गांधी मैदान के निकट स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर राजकीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। समस्तीपुर जिले के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के हरपुर एलौत गांव के औद्योगिक क्षेत्र में कल रात एक वारंटी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार पांडे ने बताया कि मामले में पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है। हैदराबाद में संपन्न 38वीं सब जूनियर बालक नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। सेमीफाइनल मुकाबले में दिल्ली ने बिहार को 34-27 से पराजित कर दिया। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी चैंपियनशिप के बालक वर्ग के एक मुकाबले में पटना ने सहरसा को 4-0 से पराजित कर दिया। वहीं बालिका वर्ग में पटना की टीम ने एक तरफा मुकाबले में कैमूर को 8-0 से हरा दिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में शिक्षकों की तबादला नीति से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बिहार में हर 5 साल पर शिक्षकों का तबादला होगा। पुरूषों का गृह अनुमंडल और महिलाओं का गृह पंचायत में नहीं होगी तैनाती। दैनिक जागरण लिखता है, नीट पेपर लीक मामले में तीसरी चार्जशीट दायर। सीबीआई ने चार्जशीट में 298 गवाहों और 35 भौतिक वस्तुओं की जांच का हवाला दिया। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, डिप्टी सीएम के बंगले से एसी, सोफा और नल की टोटी गायब। भाजपा बोली, तेजस्वी ले गए। राजद बोला, बिल्कुल झूठ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जारी भूमि सर्वे के तहत पुश्तैनी जमीन के लिए वंशावली पर पंचायत प्रतिनिधियों से हस्ताक्षर कराना जरूरी नहीं। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, दरभंगा में पश्चिमी कोसी तटबंध टूटने की तकनीकी जांच कराई जाएगी। राज्य में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत अब तक 2,80,00,000 पौधे लगाए गए। और डाक सेवा के तहत पार्सल और चिट्ठियां पहुंचाने में बिहार देश भर में शीर्ष स्थान पर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।